ओम शांति। 31 दिसंबर 1983। ये विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं है, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है, लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना? यह नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी? अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई, बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना? क्यों लगाते हो? भट्टी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। बिंदी लगानी आती है पांडवों को? बिंदी लगानी आती है? अच्छा, शक्तियों को बिंदी लगानी आती है? अविनाशी बिंदी, आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना? मैरिज समारोह मनाना है। अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए? मैरिज तो हो गई है ना, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिसकी मैरिज नहीं हुई है वहां हाथ उठाओ। कितना भी नाच नखरे करो लेकिन माशूक क्या करने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानता है कि छोड़कर जाएंगे। कहां जाएंगे? जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर विदेश में क्या बन जाते हैं? हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या? हिप्पी पता है ना? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते? आप सब तो राज्य अधिकारी हो इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हो, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। 31 दिसंबर 1983। क्या सुना? यह विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं है, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है, लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना? यह नए वर्ष में भी यह रीति रस्म साथ चलेगी? अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा साथ और हाथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य व बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हो। आप लोग भी विशेष याद की भट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना? क्यों लगाते हो? बिंदी क्यों लगाते हो? भट्टी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो। तो आज का दिन सारा ही सहज योगी व श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। एक फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, दूसरा समर्थ स्वरूप। बिंदी लगानी आती है ना, पांडवों को बिंदी लगानी आती है, अच्छा शक्तियों को बिंदी लगानी आती है, अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया, समारोह मनाना है ना, मैरिज समारोह मनाना है। अभी मैरिज की नहीं है क्या विठल भाई, मैरिज की है कि नहीं की है? क्या नहीं की है? कल दादी कह रही थी ना, इधर या उधर शायद, कि विदेश गई थी तो उन्होंने पूछा शादी हुई है क्या, दादी ने कहा हाँ हुई है। किससे हुई है? शिव बाबा से। बच्चे कितने हैं? दो, एक सुख एक शांति। बाल बच्चे पैदा नहीं किए हैं? मैरिज तो हो गई है ना कि नहीं हुई? लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिसकी मैरिज नहीं हुई है वो हाथ खड़ा करो, कितना भी नाज रखने करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानता है कि छोड़कर जाएंगे कहाँ जाएंगे। जैसे आजकल विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर क्या बन जाते हैं विदेश में, हिप्पी बन जाते हैं। क्या करते हैं हिप्पी? आवारा घूमते फिरते। क्यों? दो चीजें होती है हिप्पियों की, दो चीजें। एक तो हिप्पी की दो चीजें होती है, एक तो स्वतंत्रता और दूसरा ड्रग्स। उन्हें जो पुरानी विचारधारा है उनसे मतभेद है। 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स में जो ये चला था मूवमेंट हिप्पीज का, उनके स्वतंत्र मत थे। अभी तक की जो रूढ़िवादिता थी, अभी तक की जो विचारधाराएं थी, अभी तक की जो मान्यताएं बिलीफ सिस्टम थी, उन सब से उनको अलग रहना था। विद्रोह था वो एक, अभी तक का जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके विरुद्ध। इसलिए उन्होंने नया एक मार्ग अपनाया कि स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार। जैसे जब उठना है तब उठो, जब कर जो करना है करो। सब बाल बढ़ाते काटते, हम बाल बढ़ाएंगे। और सेकंड था ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स, LSD, गांजा, चरस, कोकेन, वो सब लेकर अनुभव करना कुछ नएपन का। तो ऐसी उनकी विचारधारा थी, तो वो एक मूवमेंट, नया मूवमेंट था, न्यू एज मूवमेंट जैसा ही। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं, तो हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या हालत होता है जो देख भी नहीं सकते? आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते बन बन। लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। तो क्या सुना? दृढ़ संकल्प की निशानी है बिंदी, समर्थ स्वरूप की निशानी है बिंदी। कब लगाते हैं? भट्टी में लगाते हैं, शादी में लगाते हैं। सुहाग की निशानी है बिंदी, तिलक की निशानी है बिंदी, तो बिंदी लगाते हैं। तो तुम भी क्या करो, बिंदी लगाओ। कौन सा समारोह मनाना है? मैरिज। किसके साथ मैरिज? बाप के साथ मैरिज। तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, मैरिज की है या नहीं की है? एक है वो हमारा साजन है, दूसरा वो ग्रूम है अर्थात दूल्हा, और तीसरा वो पति है। ऐसे ये तीन संबंध है। एक तो बिफोर मैरिज माशूक, फिर ड्यूरिंग मैरिज ब्राइड ग्रूम, और फिर आफ्टर मैरिज मैं तुम्हारे पतियों का पति हूं। तो ये तीन संबंध है उसके। तो बाबा ने कहा मैरिज सेरेमनी मनाओ, मैरिज सेरेमनी अर्थात विवाह करो। कैसे करेंगे? पहले जन्म पत्री मिलाएंगे। अच्छा, तो पहले जन्म पत्री मिलाएंगे। और राजकुमार भाई विवाह कैसे करेंगे उसके साथ? उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और क्या करेंगे? उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? हाँ, दूल्हा देखेंगे, एज वगैरह क्या है, ठीक ठाक है या बूढ़ा है या जवान है, धर्म क्या है, कुल क्या है, जाति क्या है, वंश क्या है, गुण कैसे हैं, प्रोफेशन कितना है, माल कमाता कितना है और संस्कार कैसे है, फैमिली कैसी है और जोड़ी कैसे लगेगी दोनों की और मैचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं एक लंबा एक छोटा, एक मुरली में बोला था पापा ने, मुरली थी ना एक मियाँ बीवी राधी, तो क्या करेगा काजी, और स्वभाव संस्कार कैसा है, कोई व्यसन व्यसन तो नहीं है और क्या परिवार में मेंबर कितने हैं, घर है कि नहीं है, कूल कैसा है, कार भी है कि नहीं घुमाने के लिए, कौन सी है और केयर करेगा कि नहीं करेगा और झगड़ा बिगड़ा तो नहीं है घर में और अच्छा कोई गुप्त बीमारी तो नहीं है उसको। कोई कोई होती है सोरियासिस वगैरह, शादी के टाइम पे छुपा देते हैं, बाद में आ जाती है तो शादी टूट जाती है। देखने में कैसा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, कैसा है और हर तरह की रास मिलानी और वो हो गया और तो खर्च और भी कुछ दहेज तो वो दो देता है कि हम देते हैं, उसकी डिमांड क्या है, दिखाते करते दूसरे से तो भगवान से विवाह कितनी अच्छी बात है जिन्होंने ये निश्चय कर रखा है या जिन्होंने बचपन से ही निश्चय किया था कि भगवान से ही विवाह करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। कितना अच्छा संकल्प है ये, कितनी इस संकल्प में कितनी पवित्रता है। इसमें ये नहीं है कि स्त्री है या पुरुष है। सूफियों में भगवान को क्या समझते हैं? स्वयं को पुरुष और उसको पत्नी, ऐसी मान्यता है सूफियों में। हम माशूक और वो आशिक, सूफी, हम पुरुष और वो हमारी प्रियतमा जिससे हम प्रेम करते हैं, ऐसी मान्यता है सूफियों में। ये भी एक विचारधारा है कि भगवान को हमेशा उस संबंध से जोड़ा है जो प्रेम और प्रेमिका और प्रेमी प्रेमिका संबंध होता है। एक तो दोस्त का संबंध, मालिक का संबंध, सखा का संबंध वो अलग, परंतु ये प्रेम का संबंध है जिसमें कभी हम स्त्री है तो वो पुरुष, तो कभी वो भी स्त्री है और हम पुरुष। ये भी मान्यता है संसार में सदियों से रही है। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी ने अपने किताब में वर्णन किया है कि मेरा जो ब्राइडग्रूम है वो जीसस क्राइस्ट है, मैं उसकी ब्राइड हूं, शादी हुई है और वो आ रहा है और मैं उसकी जो ब्राइड है, उसकी जो दुल्हन है, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। ऐसा वर्णन किया है जीसस के प्रेम का कि वो ग्रूम है, मैं ब्राइड हूं। तो ये जो संबंध है प्रेमिका प्रेमिका का, पति का पत्नी का, ये एक अजीब अलौकिक अलग ही संबंध है और लोगों ने, भक्तों ने, महान संतों ने भगवान को इस संबंध से भी याद किया है। भक्ति के पांच प्रकार में यह पांचवा प्रकार है जिसको कहते हैं मधुरा भक्ति। एक है शांत भक्ति जिसमें वो इस संसार का मालिक है और हम उसके संतान हैं। दूसरी है सखा भक्ति जिसमें वो हमारा सखा है। बंगाल में कभी संप्रदाय था सखी संप्रदाय। उस संप्रदाय में वो उसको सखा नहीं सखी समझते हैं। तो एक संबंध है सखा भक्ति। तीसरी भक्ति है वात्सल्य भक्ति, जो भगवान को क्या समझना, छोटा सा बच्चा। भगवान को लोगों ने कितने संबंधों से याद किया है, हमेशा संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। एक है दास्य भक्ति, अर्थात हम उसके दास है। उसमें भी कुछ कुछ भक्त तो ऐसे हैं, दास नहीं दासान उदास, उसके दास के दास के दास, दासान उदासान उदास। और फिर एक दूसरा संप्रदाय भी है, एक दूसरे प्रकार की भक्ति भी है, जो भगवान को अपना पति, जो भगवान को अपना प्रियकर, प्रियतम मानने वाले, उनको कहा कहते हैं मधुरा भक्ति। और ये एक अलौकिक अजीब प्रकार की भक्ति है, अलौकिक प्रेम है। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं बाप से प्रेम करो, बाप से विवाह करो। क्या ऐसा विवाह हमने भगवान से किया है? पानी ग्रह संस्कार, 16 संस्कारों में एक संस्कार है पानी ग्रह संस्कार, अर्थात विवाह, अर्थात उससे संबंध ऐसा जोड़ देना कि हमेशा के लिए वही एक मात्र पति रहे, हमेशा के लिए कोई भी संसार का व्यक्ति हमारा पति नहीं है, वही पति है उसके लिए। क्योंकि आत्मा को ये समझना पड़ेगा कि वो स्त्री है, वो फीमेल है, और उसका वही एक मात्र साजन भी है, दूल्हा भी है, पति भी है, सब कुछ है। तो भगवान से विवाह करना, और एक बार यदि विवाह कर लिया तो फिर क्या? फिर कभी उसको न छोड़ना। ऐसी पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी में बहुत बल होता है, बहुत पावर होता है। शास्त्रों में भी दिखाया अनुसया, वो देवताओं को भी छोटा सा बच्चा बना देती है। तो जैसे एक पवित्रता नारी में बल होता है, वैसे एक पतिव्रता नारी में भी बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है। ऐसा गायन है, चाहे वो सीता दिखाई है, चाहे वो द्रौपदी दिखाई है, चाहे वो तारा दिखाई है, चाहे वो मंदोदरी दिखाई है, और एक है कोई कुंती, अहिल्या, तो है तो बहुत सारे, परंतु पांच ही मुख्य है। तो कोई भी हो उनमें पावर बहुत होता है। तो इसलिए एक से विवाह करना, उस एक के विवाह में एक निष्ठ रहना, उस एक से ही फिडिलिटी, अर्थात जिसको कहते हैं विश्वास या समर्पण भाव, सब कुछ एक से ही, उसके अतिरिक्त कोई भी ना हो, ऐसा विवाह, ऐसा गॉडली मैरिज, ऐसा मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। शेक्सपियर की कविता है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, केवल एक ही से सब कुछ। तो क्या हमने ऐसा विवाह किया है उससे? क्या हमने ऐसी मैरिज बी ट्रोदल उसके साथ की है? अगर नहीं की है तो कब करनी है? आज करनी है। सेंटरों पर या रिट्रीट जब होती है तब की जाती है, आग जलाई जाती है कुमारों की भट्टियों में, इस तरह की बहुत अच्छी होती है। हम सोच रहे थे कहीं यहाँ कभी यहाँ पर भी की जाए, और उसके लिए आग चाहिए। तो विवाह, और विवाह क्या है वास्तव में? तो एक एक तो होता है विवाह हो गया, परंतु एक होता है विवाह में वो सारी बहुत सारी बातें होती है, उसकी तैयारियां और वो सारा आयोजन, वो सब क्या है? निमंत्रण, आयोजन, तैयारियां, वो सारी खरीदारी, वो सब एक रीति से, मतलब वैसे तो दो व्यक्ति वैसे ही जुड़ सकते हैं कि ये तुम्हारा पति है ये तुम्हारी पत्नी है, हो गया काम पूरा हुआ, परंतु वो सब की क्या आवश्यकता है? माहौल पैदा करने के लिए, और वो सब करने की क्या आवश्यकता है? अरे प्रूफ तो वैसे भी कोर्ट में किया जा सकता, प्रूफ को तो वो उसमें साइन कर दो, हो गया प्रूफ, तो वो इनविटेशन भेज देंगे, खत्म। वो सब करने की क्या आवश्यकता है? सतपदी, सतपदी पता है ना, सात प्रतिज्ञा है, सात फेरे, वो सब क्यों? वो इतना सब जो किया जाता है उसमें सात प्रतिज्ञा है, पहले तीन इसके तरफ से चार उसकी तरफ से, वो सब क्यों? मेस्मराइज, सम्मोहन है वो, एक वो सब क्या है? एक सम्मोहन है, अर्थात उस दो व्यक्तियों को, नहीं तो कैसे विश्वास हो जाएगा कि यही मेरा पति है या वही मेरी पत्नी है? वो पूरा आयोजन किया जाता है, कितने दिनों से उसकी तैयारियां चालू हो जाती है, तब से ही सबकॉन्शियस माइंड में वो भरना चालू हो जाता है। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, अगर किसी की शादी होने वाली है तो वो किसको, उसके बारे में सोचती रहती है, सोचती रहती है, अभी शादी हुई नहीं है, पहले ही सोचना चालू हो जाता है, सम्मोहन वहां से चालू हो जाता है कि ये मेरा पति बनने वाला है, ये मेरा पति बनने वाला है, ये मेरा पति बनने वाला है। कार्ड छपते हैं, फैलते हैं, फिर उसकी खरीदारी होती है, वो इतना सारा आयोजन होता है, फिर वो दूल्हा भी घोड़े पर बैठता है तो उसको भी कैसे अपना एक नशा चढ़ जाता है, वो भी कभी भूलता थोड़ी है। हाँ वो दूसरी बात है, वो उतरता है। वो दिखाया ना वो पति, वैसे तो बहुत सारे हैं, वो अपने शादी की वो देखते रहता है वीडियो। और देखते देखते फिर एकदम कहता है मत चढ़ना मत चढ़ना मत चढ़ना मत चढ़ना। तो वो तो क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं, मैं अपने आप से कह रहा हूँ। वो घोड़े पर मत चढ़ना। तो वो एक संपूर्ण जैसे सम्मोहन, तो उसकी भी आवश्यकता है। इसके लिए हरेक कुमार हरेक कुमारी का एक बार विवाह होना चाहिए, ज्ञान में आने के बाद पूरा विधिवत समर्पण समारोह का, वो जैसा, वो नहीं समर्पण समारोह वाला नहीं, वो शादी वाला कुंड पूरा, उसमें अग्नि कुंड और उसमें पंडित जी, हम लोगों ने एक बार किया था एक सेंटर पर, वो पूरा कंप्लीट आयोजन, और वो जो भाई थे वो कंप्लीट, वो एक्चुअली पंडित ही थे। भूतपूर्व ज्ञान में आने से पहले यही काम किया करते थे। तो उन्होंने पूरा पूरे सारे सारे के सारे कुमार थे उन सबको पूरा दूल्हा, और शिवा को भी पूरा दूल्हे के जैसा, वो जो फोटो है उसका, उसको दूल्हे जैसा सजा दिया था। तो फेरे पूरे, तो बाबा यहाँ कह रहे मैरिज सेरेमनी मनाओ। एक तो है स्थूल मनाना, फिर दूसरा है सूक्ष्म में मनाना, मन में ही जो कुछ वहां होता है वो अपने मन में विजुलाइज करना, जो कुछ वहां होता है अगर हो जाए ऐसा तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मन में विजुलाइज करना, मन में देखना कि हम, मेरी भी शादी हो रही है। अभी अभी हम एक जगह गए थे वो, जहां दादी ने 44 कन्यास थी उनका समर्पण समारोह मनाया संबलपुर में, तो वहां पर एक, फिर वो कुछ कुछ कन्याओं ने अनुभव सुनाए, तो एक कन्या ने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया, उसने कहा था कि मेरे तो काड़ी के शादी के कार्ड भी छप गए थे उधर। वो तो भाग के आ गई थी वहां से, उधर कार्ड भी छप गए थे, पूरी शादी सब कुछ फाइनल हो गया था, और उसके बाद में फिर वो निकल के इधर आई, और उसके फिर भैया और भाभी भी आई, उसका इधर शिव बाबा से विवाह करना, नहीं तो बस उधर होने ही वाला था। एक दूसरी कन्या ने अनुभव बताया था कि मैं बचपन से सोचती थी कि मेरा कब विवाह होगा, मुझे भी दुल्हन बनना है। हमको पहली बार ही पता चला ऐसा भी होता है। तो उसको बचपन से इच्छा थी कि मेरी भी शादी हो, और फिर जब ब्रह्मा कुमारी बन गई तो लगा बस अब तो गया, वो तो शायद ही कभी इच्छा पूरी होगी। अब वो जो उधर वाला इच्छा थी ना कि वैसे पूरे ड्रेस बेस और वो सब हो, वो तो पूरा बिल्कुल ऐसा लगा आज अभी तो कभी नहीं होगा, पर ये जो समारोह हुआ तो फिर बड़ा अच्छा लगा। फिर अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर भी होता है। तो विवाह, भगवान से विवाह करना, भगवान को अपना पति स्वीकार करना, और एक के ही प्रति निष्ठा, एक की प्रति विश्वास, एक के ही प्रति, और उसके अतिरिक्त यदि भारतीय संस्कृति में एक पत्नी यदि पर पुरुष को देखती है तो उसे क्या कहा जाता है? कुल कलंकिनी, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं उसको, कठोर से कठोर, अशोभनीय, लेना भी अशोभनीय है, ऐसे बहुत से नाम दिए जाते हैं। तो हमारा भी विवाह एक से हुआ है, तो एक ही के प्रति समर्पण भाव, तन मन धन बुद्धि संस्कार कर्म, कर्म का परिणाम संबंध संपर्क, जो उस दिन गिनाए थे 7 प्रकार के समर्पण, 7 ही प्रकार के समर्पण केवल एक के प्रति। ईश्वरीय विवाह, अलौकिक विवाह, डिवाइन मैरिज, गॉडली मैरिज, सेलेस्टियल मैरिज, एक से। मीरा जब छोटी थी और उसने जब बारात देखी जा रही है और उसकी माँ से पूछा कि ये कौन है, तो माँ ने बताया ये विवाह है, ये विवाह हो रहा है। उसने कहा वो कौन है जो दूल्हे घोड़े पर बैठा है? उसने कहा वो दूल्हा है। तो उसने कहा मेरा दूल्हा कहाँ है? तो उसने कहा कि तेरा दूल्हा तू जब बड़ी होगी तब आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बताओ कब आएगा? उसने कहा नहीं तू जब बड़ी हो गई हो, इतनी बार जब पूछा तो एक कृष्ण का छोटा सा, वो कृष्ण का जो पुतला था वो पंडित जी लेके आए थे, वो जो मैरिज थी उसका, वही का था, उसका था वो। तो उसने कहा दिया ये तुम्हारा दूल्हा है लो, और उसने उस छोटे से कृष्ण को ही दूल्हा मान लिया। दिखाया है वो पंडित जी दूल्हा तो वापस लेके चले जाते, और फिर उस पंडित जी को बार बार स्वप्न में आता है कि ये जो है ना मूर्ति, वो जो है वो उसको जाकर दे दो, छोटी बच्ची को, मीरा को। तो वापस कुछ दिनों के बाद आकर उस छोटी बच्ची को दे देते हैं। तो उसने मन ही मन में उसी को अपना पति मान लिया, महारानी गिरधर गोपाल। एक गिरधर को ही, एक गोपाल को ही अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ मान लिया, उसी से विवाह भी कर लिया। लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे घर फोड़ी रे। 8 प्रकार के विवाह है भारतीय संस्कृति में, 8 प्रकार के विवाह, उसमें से एक विवाह की चर्चा साकार मुरलियों में आती है। कौन कौन सा? गंधर्व विवाह। 4 विवाह है वो प्रशस्त विवाह है, और 4 जो है वो अप्रशस्त विवाह है। प्रशस्त अर्थात जो मान्यता जिनको प्राप्त है और जो योग्य है। सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह अर्थात जिसमें माता पिता, अरेंज मैरिज हमारी भाषा में, डिटेल्स में ना जाके अरेंज मैरिज बोल दिया, मतलब वो है ब्रह्म विवाह, जिसमें माता पिता भी राजी है, खुश है, वो जो कन्या है वो भी खुश है, सारे कुंडली विंडली सब मिल गई है, इधर का पक्ष, वर पक्ष, वधु पक्ष, दोनों सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, सभी सहमति है, सब कुछ अच्छा है, बड़ी खुशी से धूमधाम से ये विवाह हो रहा है, ये है ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह जो है उसमें माँ बाप कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत बड़ा, शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान, और उस कारण में उसके वजह से अपनी कन्या का किसी को दान कर रहे हैं, कन्यादान, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि सामने का जो पक्ष है वो सहमत है या उस तरह से अरेंज मैरिज हो रहा है। यहां दान दिया जा रहा है कि ये अनुष्ठान हो रहा है तो हमारी कन्या आपको दान में, इस कार्य में हमारी कन्या, तो यहां कन्यादान दिया जाता है। यह दूसरा विवाह। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को कुछ ना कुछ बहुत बड़ी भेंट दे देते हैं, जैसे गाय मोस्टली गोदान, और उसके रिटर्न में वो अपनी कन्या दे देते हैं उसमें वर को और शादी हो जाती है। ये लोग कुछ देते हैं, अगर ना दे तो ना होगी। वो उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी इसलिए क्या देंगे ये लोग, तो अपनी कन्या को दे देते हैं। दूसरा जो था उसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में कन्या का दान कर देना है। चौथा जो है वो प्राजापत्य, प्राजापत्य विवाह। ये जो विवाह है उसमें कन्या की सहमति नहीं है, परंतु माँ बाप उसकी सहमति के बिना किसी अभिजात्य अर्थात बहुत ऊंचे कुल में कन्या का विवाह कर रहे हैं। मतलब कुल बहुत ऊंच है पर कन्या की इतनी सहमति नहीं है, पर माँ बाप की सहमति है इसलिए विवाह कर रहे हैं। ये चार। अब जो आगे के चार जो है राजपत्नी प्रजापत्य ये चारों ही प्रशस्त विवाह कहा जाता है। योग मना योग्य, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल और योग्य, एप्रोप्रिएट जिसको मैरिज कहा जाता है। दूसरे और चार प्रकार है, ये चार प्रकार अप्रशस्त है अर्थात स्वीकार्य नहीं है। इनमें भी पहले जो दो है वो फिर भी योग्य है परंतु फिर भी स्वीकार्य नहीं है। आगे के दो जो है वो तो बिल्कुल अस्वीकार्य भी नहीं है और ना ही योग्य है। उसमें पांचवा है गंधर्व विवाह, जिसमें दो लोग आपस में मिलके माँ बाप की इच्छा के बिना लव मैरिज, अपनी भाषा में बाबा जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं गंधर्व विवाह तो एक दूसरे अर्थों में करते हैं। बाबा जब मुरलियों में गंधर्व विवाह कहते हैं तब कहते हैं, तब इस अर्थ में करते हैं कि ये भी एक कन्या है जिसके माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते और बहुत विरोध है, एक कुमार है जो ज्ञान में चलता है और ये तो विवाह करना ही चाहते हैं, तो ये दोनों विवाह तो कर लेते हैं परंतु पवित्र जीवन बिताते हैं। इसको इस अर्थ में गंधर्व, परंतु फिर भी एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने शायद थोड़ी बातें इसके बारे में कहा, यदि कोई अपने मन से गंधर्व विवाह करे तो बहुत कुछ करते हैं। एक तो सबसे पहले बाप की श्रीमत का उल्लंघन, दूसरा समाज के सामने कौन सा आदर्श स्थापन करते हैं, कोई बहुत अच्छा आदर्श स्थापन नहीं करते जो पहले ज्ञान में है और फिर गंधर्व विवाह किया। तीसरा चाहे कितना भी पवित्र रहे, चाहे दोनों कितना भी पवित्र रहे, कहने में तो आएगा ना ये मेरा युगल है कहने में तो आएगा ही कि ये मेरा युगल है, बंधन बंधन तो है, हाँ एक तो लग गया दाग। ये तीन कारण है गंधर्व विवाह के। इसके लिए वो अलग चीज है कि भगवान अगर कहे श्रीमद दे, ऐसे कुछ कुछ कुमार है यज्ञ के आदि में जिसको स्वयं भगवान ने ही आदेश दिया कि तुम कर लो शादी। मम्मा ने ही कई बार किसको कहा था, वो कौन सी बहन है, शुक्ला बहन, मम्मा ने खुद कहा था कि कर लो, वो अलग चीज है, परंतु किसी ने कहा नहीं और हम ही अपनी बुद्धि चलाकर सोच रहे हैं कि इस कन्या का मैं कल्याण करना ही है मुझे, बिचारी का क्या होगा, जबरदस्ती किसी कन्या का कल्याण करने का हे कुमार सोचना भी मत नहीं तो फंस जाओगे, जबरदस्त फंस जाओगे अब इसके लिए कल्याण करने के चक्कर में मत पड़ना किसी के, अपना कल्याण पहले करो बाद में सोचना। पांचवा गंधर्व विवाह। छठवा असुर विवाह। असुर विवाह, जिसमें खरीद कर कन्या से विवाह किया जाता है, पैसे दिए और विवाह करना। जो दूसरा प्रकार बताया प्रशस्त में, वो थोड़ा दूसरा है। तीसरा प्रकार अर्श में, उसमें तो कुछ दे रहे और इनको खुशी खुशी से विवाह करा रहे, पर ये जो है यह सीधा गिव एंड टेक है, बार्टर। इतने दिए हैं कन्या इधर, असुर विवाह। फिर है राक्षस विवाह, ये नीचे के अब जो दो है, राक्षस और पिशाच विवाह, ये ना तो स्वीकार्य है और कभी भी होने नहीं चाहिए। ये जो विवाह है ये है किडनैपिंग, अर्थात अपहरण करना, बलात् अपहरण करके ले जाना, इच्छा का तो वहां सवाल ही नहीं है कन्या का, और फिर उसके साथ विवाह करना, यह है राक्षस विवाह। और सबसे जघन्य घृणित वो है पिशाच विवाह, मदहोशी की अवस्था में दैहिक संबंध बनाना, या कोई विकलांग हो या बेहोश हो या मानसिक रीति अपाहिज हो, मानसिक रीति मेंटली रिटार्डेड, बेहोशी में, मदहोशी में ऐसे मादक द्रव्य देकर दैहिक संबंध बनाना और बाद में फिर विवाह करना, वो है पिशाच विवाह। आठ प्रकार है विवाह के, हमें कौन सा करना है? सबसे पहला ब्रह्म विवाह, किसके साथ? हाँ, लव मैरिज, माँ बाप की सहमति नहीं है उसमें, वो नीचे चौथे में पांचवा नंबर अप्रशस्त, अलौकिक ब्रह्मा और अलौकिक माँ जगदम्बा सरस्वती, हाँ इनकी सहमति से शिव बाबा से विवाह, ये है ब्रह्म विवाह, ये हर एक को करना है। अलौकिक माँ बाप जो है उनके हम बच्चे हैं, उनकी सहमति से शिव से विवाह, शिव विवाह, वो है अलौकिक विवाह, डिवाइन मैरिज, गॉडली मैरिज, सिलिस्टियल मैरिज, ईश्वरीय विवाह, निकाह, ये विवाह। मास मैरिजेस वो अलग मैरिज है, इंडिविजुअल उसमें दो है, इंडिविजुअल मैरिज एक एक, और एक है मास मैरिज एक, फिर उसमें और दूसरा प्रकार है वो स्वयंवर, वो चयन करना, उसमें से चुनना, उसमें और एक प्रकार है, एक तो कन्या खुद चयन कर ले, या तो फिर कोई शर्त रखी जाए, जैसे द्रौपदी के लिए या सीता के लिए रखी गई। हाँ, मेन शास्त्रों में आठ प्रकार के मैरिज ये दिए हुए हैं, बाकी तो फिर बहुत है। तो भगवान से विवाह करना, मन से विवाह करना, अमृत वेले विवाह समारोह मनाना कि मेरा, अच्छा जिनका विवाह पहले से हो चुका है पुरुषों के साथ, वो अब सोचे, उनको तो ज्यादा अनुभव है क्या क्या होता है, नहीं पापड़ बेले नहीं, वो क्या क्या समारोह होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं क्या विवाह में, हम शायद एक ही विवाह अटेंड किया आज तक। मुझे तो याद ही नहीं विवाह का, मतलब एक ही बार जब हम बहुत छोटे थे तब एक बार गए थे, वहां पर जो खाना खाया था, खाना खाया और सारा उल्टी हो गया, बस वो एक ही याद है और कुछ याद ही नहीं। कोई मैरिज अटेंड किया ही नहीं आज तक कभी, वो ऐसा कुछ कुछ हुआ कि कुछ बाधा आ गई कि हम गए नहीं और बाकी सब लोग गए, तो उनको तो पता ही नहीं उसमें क्या क्या होता है। तो जिनको पहले से पता है उनको तो और अच्छा है, वो सारा इमर्ज कर सकते हैं सीन, ये सारा सीन कर सकते हैं कि अभी ये सारा कुछ पहले उस वहां हुआ, अभी ये सब भगवान के साथ हो रहा है, वो वादे कसमें वो जो भी कुछ था वो सब अब यहाँ, वो शतपदी वो सात फेरे वहां जो लगाए थे अब वो इधर लगाना। हाँ, तीन और चार ऐसा होता है उसमें। उसमें भी एक एक है, पहला वायदा अन्न का, दूसरा वायदा वायदा पालना का, एक वायदा प्रेम का, प्रजोत्पत्ति का, ऐसे अलग अलग छह सात सात फेरे अर्थात सात अर्थ है उसके, तो अलग अलग है। हाँ, या स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है, स्वाहा स्वाहा। वो महाराष्ट्र में एक संत थे रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, उनकी शादी थी, बेचारे को क्या पता, वो तो बैठ गए और वो गुरु पंडित जी ने पढ़ा ना स्वाहा अटेन वो सावधान, तो उसको लगा सावधान क्यों करे, सावधान मतलब खतरा जब होता है तब सावधान किया जाता है, और जो वहीं से भागे मंडप से सावधान मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सावधान अदरवाइज क्यों कहेगा कोई, और जो भागे तो भागे और पीछे लौटे नहीं, सीधा साधु ही संत ही बन गए, सन्यासी बन गए कि खतरा है उसमें बहुत सावधान। तो एक व्यक्ति ऐसे सिनेमा हॉल से निकलता है, नहीं एक व्यक्ति को पूछते तुमने शादी क्यों नहीं की, वो 50 साल के हो गए, बोलते क्या करूं, एक बार ऐसा हुआ सिनेमा देखने गया था जब जवान था, सिनेमा हॉल से निकला अंधेरा था, तो एक स्त्री थी उसके पैरों के ऊपर पैर पड़ गया, और जैसे पड़ा वो ऐसी क्रोधित हो गई जैसे बस अभी मुझे मारने ही वाली है, बस इतना उसको गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने चप्पल ही उठा ली, और फिर एकदम मैं सामने आया उसके, मतलब पहले तो दिख नहीं रहा था, तो जैसे उसके सामने आया उसने कहा ओह सॉरी मुझे लगा मेरा पति है ओ, उसने कहा उसका पति नहीं था करके बच गया और जब भी सोचता हूँ शादी के बारे में बस उस स्त्री का वो जबरदस्त खतरनाक चेहरा सामने आ जाता है वो तो मैं नहीं था करके बच गया उस दिन और बस तब से फाइनल कर लिया कि मुझे इसमें फंसना नहीं है। तो ईश्वरीय विवाह, भगवान से विवाह, डिवाइन मैरिज विद गॉड, गॉड शिवा, ओम शांति।